ज्ञानक निरानंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे
चुपके से छिप करके छोड़ करके गए, इसलिए राधा जी की स्वच्छता का वर्णन नहीं होता, ये प्रमाण नहीं है। वो सभी को बराबर प्यार करते हैं, इसमें प्रीति करते हैं। तो जो यहाँ पर वृंदावन में रासलीला हुई उसमें
पंचायती
उसमें कृष्ण ने अंत ध्यान होकर वो कहीं चले गए। तब सौभाग्य मदन शिक्षमानं च केशव प्रथमाय प्रसादाय तत्परिवाम कर दीयते। और गोपियों का सौभाग्य मद और सुमती राधिका का मान, उन दोनों का में से उनके मान को प्रशमित कर दे और इनका मान प्रसादन कर दे। प्रशमित और प्रसादन में अंतर है। प्रशमित माने दमन कर दे, दूर कर दे उनका मान, उनका मत, और इनका मान प्रसादन माने उनके मान को बढ़ाने माने प्रसन्न करने के लिए कृष्ण महाशय अंतर ज्ञान को महाप्रभु जी ने वही राय रामानंद जी के संवाद में यहाँ पर जो कृष्ण अंतर ध्यान हुए वो छिप करके अंतर ध्यान हुए। कोई गोपी जान न ले कि मैं तुमको अधिक प्यार करता हूँ, इसलिए छिप करके अंतर ध्यान। इसलिए आप ऐसा कुछ शास्त्र के अनुसार में बताइए जिसमें रखा है कि साक्षात रूप में सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण। तो सब दामोदर ने रथ यात्रा के प्रसंग में श्रीवास और सब दामोदर से बात की, उसने राय रामानंद जी करते हैं गीत गोविंद में वर्णित रास पंचाध्यायी बसंती रास का जो वर्णन है उसमें स्पष्ट रूप में तब त्याग संजय सुंदर सब वहां पर गोपियां नृत्य कर रही हैं और राधा जी को मान हुआ। उसमें कृष्ण श्रीमती राधिका जी को राधा जी आगे जा रहे हैं और पीछे से कृष्ण सबको देखते देखते छोड़कर के चले गए, स्पष्ट होता है। इसलिए राधा जी की सर्वश्रेष्ठता इस राज पंचायत इसी बासंती राज में ही स्पष्ट रूप से ये वर्णन किया गया है। वृंदावन में जो रासलीला हुई थी वो पंचायती होकर सभी लोग जानते हैं। पंचायती मैंने सब तरह की गोपियां थी और इसमें केवल गोपियां विशेष विशेष थी, पर इसमें भी चंद्रावली जरूर होगी
डर लग गया। इसमें डर नहीं लगा
जिसमें कृष्ण को कोई भी तड़का है निर्भय होकर उनके सामने उनको याद ही नहीं होगी। आज के दिन से ये आरंभ हुआ। आज के दिन में रघुनाथ दास मस्तान और
चक्रवर्ती ठाकुर विष्णुप्रिया देवी
रघुनाथ दास मस्तान और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और
विष्णुप्रिया देवी
विष्णुप्रिया उसमें विशेष विशेष उन्नत श्रेणी की गोपियाँ थी, पंचायती नहीं थी, उसमें साधक सिद्धार्थ ये सब वो सब नहीं थी, किंतु यदि ये कहा जाए कि इसे सुपक्ष भी वाली हैं तब तो राधा जी के मान का कोई विशेष कभी कभी होता है। जैसे ललिता जी को देख करके एक बार वहाँ पर हुआ था
ललिता कुंड नंदगांव के पास
ललिता कुंड पर वहाँ पर हुआ था, ऐसा कभी होता बहुत कम क्षेत्र होता है किंतु हो सकता है। किंतु यहाँ पर हमने सुना था किसी एक वैष्णव के मुख से जैसे वो विशेष विशेष गोपियाँ थी उनका पास में रास में वो शाम सभी पंचायती में साधक सिद्ध और ये सभी उसमें रहने ऐसा। यदि इन सब में कृष्ण के इन लीलाओं में प्रवेश करने का लोग हो तो ऐसे ही साधन लोगों का कैसा रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसा और विष्णुप्रिया जी का उनका साधन ठीक है किंतु वो कुछ ऐसे पर जमाई उनमें था विष्णु की प्रिया
लक्ष्मी
करते हैं। तो उनका भजन साधन कैसा कल बताया गया था विष्णु प्रिया देवी बचपन में जबकि विवाह नहीं हुआ था कैसे गंगा तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं और सचिव भैया को देख करके श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम करती और उनको ये सचिव भैया आदर करती थी और मन ही मन में सोचती थी विशेष करके विष्णु प्रिया जी हैं लक्ष्मी प्रिया जी के जाने के बाद ये हमारे बेटे की बहू होती तो बहुत सौभाग्य की बात है। मन ही मन में वैसे तो आज और आशीर्वाद दे क्या आशीर्वाद दे तुमको जो के पति मिले और ये देखती होंगी ये हमारा बेटा जी हमारे घर में महिलाओं का ऐसा ही स्वाभाविक रहा होता है तो धीरे धीरे उन पर कुछ स्नेह बढ़ता गया और पीछे से उनकी शादी हुई महाप्रभु जी से। शादी होने के बाद में अपने को तो बहुत ही अपना गौरव समझा दिए क्योंकि उनसे हमारी शादी हुई कितना नामी पंडित निवाई पंडित जी उस समय थे किंतु ये नहीं जानती थी जैसे कुछ दिन के बाद में हमारा शरीर और ऐसा बद्राघात होगा। चैतन्य महाप्रभु गया गए और वहाँ से लौटते ही वो बदल गए अब निवाई पंडित नहीं गए एकदम खाऊ निवाई पंडित एकदम जीवन से उनका पलट अंत में उसी समय से कभी कभी मूर्छित होकर के गिर पड़ते होश नहीं होता। गया से लौटने के बाद में अपनी पत्नी से कोई प्रतिपूर्वक बात की हो ऐसा कभी उल्लेख नहीं मिलता। ये स्त्रियों के सुहाग के विपरीत है उसको भी साथी गई बड़ी दुखी थी जाती थी और कुछ दिनों के बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पांच लोगों को या चार लोगों को बताया अब मुझे रहा नहीं जाता अब मैं वृंदा बन जाऊँगा अब मैं संन्यास ग्रहण करते यह बात नित्यानंद प्रभु को
मुकुंद चंद्रशेखर आचार्य
और सुभाष पांडे
मुकुंद
चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी को ये सब पता था, कुछ विशेष लोगों को, जो लोग धैर्य धारण करते थे उनको कुछ पता था, और जो धैर्य धारण नहीं कर सकते थे उनको पता नहीं। उसी रात में वो शाम को महाप्रभु जी नगर भ्रमण के लिए गए, किसी ने लौकी दी, श्रीवास लौकी ले आए मांग कर, उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में दिया। और इसके बाद में ग्वालों के मोहल्ले में गए तो उन लोगों ने दूध दिया, कहीं पर तमोली ने पान दिया, कहीं कुछ दिया, इन सब चीज़ों को पहाड़ों को ग्रहण करते गए। और आज बड़े स्पष्ट रूप से लोगों से मिले, आज भाव इसका नाम है, मन भाव, भाव का घर एकदम उतर गया। हो लौके शाम को और मैया को दिया दूध, लौकी बना करके आज ठाकुर जी को भोग दें, और मैया बड़े प्रेम के साथ में उसे बनाया। उनको कुछ आभास हो गया था याद, रात में हमारा बेटा नहीं रहेगा, किसी तरह से उन्होंने दूध लक लकी दूध में लौकी दे करके बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया, ठाकुर जी को भोग दे करके और उनको किया बड़े प्रेम से उन्होंने आरोगा। और रात में सर झज कर, कभी सर के झलते हैं, सर झज करके अपनी पत्नी के पास ले गए, और बड़े प्रेम के साथ में उसको दुलार करते हुए अपने हाथों को उसके कंधे पर रख करके प्रेम से बातचीत करते हैं। यदि किसी को हठात ऐसा कुछ हो जो कभी संभव नहीं, तो दाल में कुछ डाला है ऐसा, जब से वो आई है तब से ऐसा स्नेह नहीं मिला था, किंतु एक बार यह स्नेह मिला, ये तो मूर्छित हो जाते थे कृष्ण प्रेम में, कृष्ण कृष्ण कह करते रहते थे, और आज ऐसा प्रेम दिखला रहे हैं। अपने हाथ से पान की बीड़ी लेकर के उनको दिया, अपने हाथ से आज उनका श्रृंगार, अब वो सोच रहे हैं रात, कल मैं गई स्नान कर, और स्नान करते जाते से मैं रास्ते में ये पत्थर से ठोकर लग गई और थोड़ा सा कट गया, रक्त निकल आया। जब कभी शुभ काम के लिए जाते हैं, यदि ऐसे किसी चीज की ठोकर लग जाए तो समझो जैसे ये यात्रा में ही कुछ बाधा है। यदि कोई हिरण या पशु दाहिने तरफ से बाएं तरफ में चला जाए, कुत्ता रोने लग जाए, या कौवा काँव काँव कर रहा हो, तो उस समय समझना कि यात्रा कुछ गड़बड़ी है। पहले इस सब का विचार किया जाता था, विचार करके लोग चलते, शकुन विचार करके, ग्रह नक्षत्रों का और तारों का कुछ मनुष्य पर पृथ्वी पर ये कुछ प्रभाव पड़ता है, इसलिए देख सुन करके ये सब विधियाँ पड़ता है। तो सोच लीजिए आज हमारे नजने ललाट में क्या लिखा है। इसके बाद में मैं स्नान करने के लिए गई, तो वहां से लौट करके सची मैया को कह रही है, मैया आज बड़े दुख की बात, जब मैं स्नान करने गई तो ठोकर लगा और रक्त निकलने लगा, और गंगा में स्नान करते करते हमारी विवाह के समय का जो सुहाग रूपी जो
बेसर
नाक का बेसर बोल दे गया, और मैं खोजते खोजते हार गई और मोह नहीं किया। भैया किसी प्रकार से धैर्य धारण करा रहे थे, तो जान रही है कुछ अशुभ होने वाला है, और किसी चीज को लेकर के हृदय में, और जब महाप्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं, पान की बीड़ी दे रहे हैं, और सब इतना स्नेह कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उनसे तरह तरह की हंसी मजाक की बातें करने लगे, उनका मन रंजन करने के लिए, और थोड़े देर के बाद में ऐसी नींद आई जोरों की कि मानो हजार मन का बोझ उनके पलकों पर आ गया, और बहुत रोकने पर भी नहीं रुक सकी, और वो सो गई। एक भगवान की योग माया, जब वो सो गई तो निश्चित की भांति में एक बार देखा होगा शायद, और देख करके बस निकल गए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग वृंदावन में गए थे, उसी दिन महाप्रभु जी का संन्यास का माघी पूर्णिमा माघी पूर्णिमा इसके पहले अभी जो पूर्णिमा गई थी अमावस्या
वाला है
उसी दिन में महाप्रभु कर पाएंगे संन्यास के लिए। रास्ते में मार थी मैया एकदम लकड़ी की भांति हो गई थी। मैया को उन्होंने प्रदक्षिणा किया, मैया ने उनको पकड़ कर पकड़ी भी नहीं, बोली भी नहीं, कुछ बोल नहीं पाई, लकड़ी एकदम हो गई, आंसू भी सब जल करके खत्म हो गए, सेंस भी नहीं रहा। मैया को प्रणाम किया, प्रणाम करके प्रदक्षिणा की और कृष्ण कृष्ण कहते हुए पासी में निदया घाट नी दया जिसमें दया नहीं है वहां पर गए और एकदम लहराती ही गंगा में पानी भरा हुआ और एकदम ठंडा माघ का महीना, यही महीना
माघी पूर्णिमा में संन्यास लिया,
माघी पूर्णिमा को संन्यास लिया।
वृंदावन ने बताया थे कार्तिक महीने महाप्रभु का आगमन जाता
था,
माघी
पूर्णिमा के दिन वो गंगा नदी में एकदम और उस पार निकल करके कहाँ कंटक नगरी
कटवा
वहां पर जाकर के सवेरा हो गया वहां जाने के बाद, और सवेरा होने के बाद में वहां पर उन्होंने संन्यास लिया। वो भी विचित्र कहानी, शरीर सिर्फ ठुकरा गए पाल पेश नाई वो मुंडन नहीं कर पाता था, रोने लग गया। गुरु उनको संन्यास का मंत्र नहीं देना चाहते किंतु जो माया के प्रभाव से अघटन घटन पटेशी शक्ति के द्वारा ये सब कुछ संपन्न कराया। संपन्न कराने के बाद में उनके गुरु जी को कहा जैसे ये मंत्र उनको देना चाहते हैं, इसी बहाने उनको वो मंत्र दे करके और उनको शिष्य करके फिर उन्हीं से मंत्र को सुनाया, सुन करके चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। नित्यानंद प्रभु जी ने किसी प्रकार से उनको बाका करके और शांति सुख ले गए और वहां से शांति पुर से अपनी मैया से मिले, सभी लोगों से मिले, जितने नवद्वीप के धाम के वासी थे सभी लोग उनसे मिले शांतिपुर, किंतु एक नहीं मिली। उसका हृदय कैसा करता होगा? कोई यदि प्रतिकूल हो तो छोड़ा जा सकता है, जैसे बताया है ना, गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् दैवं न सस्यात् पतिश्च न सस्यात् नमो चैद्या समूपे। यदि पत्नी हमारे भजन के अनुकूल नहीं है तो इसको छोड़ने में कोई दोष नहीं है, यदि भगवान का हम भजन एकांतिक रूप से भजन करते हैं, और यदि पति भगवान का भजन नहीं करता है एकांतिक रूप से तो उसको भी छोड़ देने। किंतु विष्णु प्रिया जी क्या कुछ भक्ति विरोधी थी? भक्ति विरोधी थी क्यों छोड़ी? उनको आदर्श स्थापित करना है। और कुछ पूर्व लीला का जो ऋण था इसको भी चुकाना है, और ऋण क्या?
रामचंद्र
जी ने
मदद्रुम द्वीप
में छोड़ दिया था सीता जी को, अपने राजभवन में रहे और सीता जी को वनवास दे दिया। सीता जी के गोद में भी कुछ नहीं था, पीछे से उनको गर्भ था, पीछे से दो बच्चे लव कुश हुए, उनको लेकर के किसी प्रकार से भी कटा। अच्छा, ये सीता जी भी क्या रामचंद्र जी के प्रतिकूल थी? वो तो नहीं थी, लोगों के कहने से ऐसा उन्होंने निष्ठुर होकर। अब वो सीता जी वहां पर जैसे वनवास में जीवन बिताते हुए दिन रात राम का ही स्मरण कर रही हैं, रोती हैं, वीर से आतुर हो चुकी हैं, उसमें खाना पीना अच्छा लगता है? हम लोग आए हुए हैं, हम लोग खा पी रहे हैं खूब आनंद के साथ में, दिन भर हो हाँ चल रहा है, रंग बिरंग तरंग सब चल रहे हैं। यदि किसी महिला का पति मर जाए या वो चला जाए उसको छोड़ करके, महिला को खाना पीना भोग राग रंग तरंग ये अच्छा लगेगा? भजन का ये भाव कृष्ण के लिए पूछ रहा है। हाँ, कृष्ण कहाँ गए मेरे, उनके बिना मैं रह नहीं सकता, ये यथार्थ में संन्यास की या त्याग करने की ये अधिकार है। इसके पहले हम लोग आते हैं खूब तरंग रंग में रहते हैं, कभी कभी तरंग रंग में डूब करके एकदम भक्ति से भी विचलित हो जाते हैं, उसमें सौभाग्यवान जीव इन चीजों को उपयुक्त गुरु उपयुक्त वैष्णव और उपयुक्त शास्त्रों का अनुसरण करके आगे बढ़ करके इसी चीज की अनुभूति करता है। रामचंद्र जी सीता को त्याग किया है और ये चली गई, उस समय इनकी क्या स्थिति होगी? असहाय छोड़ दिया और ये असहाय करके विलाप करते हैं, किसी प्रकार से बाल बेटी आश्रम में रखी गई, उनको बड़े प्रेम के साथ रखा। कुछ दिन के बाद में लवकुश का जन्म हुआ, फिर इनका पालन पोषण करती हुई रहने लगे। इधर में रामचंद्र जी जैसे सीता जी हैं, जिस प्रकार से वन में रहती हुई सबसे उनका चिंतन करती हुई रहती हैं, बड़े दुख से कष्ट से बच्चों को ये जानने नहीं दे रही क्यों वो दुखी हैं। कभी कभी रोती हैं, बच्चे पूछते हैं तो कुछ उत्तर नहीं दे रही, उसमें कैसा लगता होगा? बच्चों को बाला रही हूँ, अपने दुख का कारण नहीं बतला रही हूँ। और रामचंद्र क्या कर रहे हैं? राजभवन में नहीं रह करके, राजभवन में नहीं रहते, वन में रहते, ठीक जैसे सीता जी चटाई इत्यादि का व्यवहार करके किसी प्रकार से भी रहती हैं, कभी उपवास रहती हैं, कभी कुछ रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से उनकी चिंता में डूबी हुई राजभवन में रहते। हम लोग का साधक का भी ऐसा ही होना चाहिए, यदि ऐसा कोई साधन नहीं करेगा, मठ में घर बार स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ करके आए हैं, रंग तमाशा के लिए नहीं आए, ऐसे साधन कर रहे हैं। वहां पर रामचंद्र जी साधक बने हैं, उधर सीता जी भी वैसे ही साधन कर रहे हैं, उधर रामचंद्र जी भी राज में रह करके राजभवन में रह करके समस्त प्रकार के ऐश्वर्य में डूबे रहने पर भी उनको कुछ भी नहीं छूता है, कुछ सुहाता नहीं, चटाई पर नीचे सोते हैं। लक्ष्मण जी किसी प्रकार से सांत्वना देते हुए उनके पास संवाहन इत्यादि करते हैं, बहुत समझाते हैं, और रात भर सोते हैं कि नहीं सीता जी चली गई तो उनका सोना भी उनके साथ में चला जाता है। हम लोग को देखो तो पैसा है, हम लोग कितना सोते हैं, कैसे करते हैं भजन के लिए, भगवान के भजन के लिए इतना कष्ट और दुख होता है कि नहीं, ये समझो। और रामचंद्र जी ठीक वैसे ही अधिकल सीता जी की हानि कर रहे हैं। जैसे वहां पर कर रहे हैं, अब सोचिए जैसे इनका ऋणी मैं हूं, अभी इस जन्म में तुमने सीता को बाहर किया और वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं, अब मैं ऐसी लीला करूंगा जिसमें अपना इस ऋण को चुका सकूं, मैं खुद घर से निकलूंगा और सीता जी को घर में रखूंगा, इसे ऋण चुकेगा क्या? इसे ऋण चुकेगा? लक्ष्मी विष्णु प्रिया जी को, सीता जी को माने विष्णु प्रिया जी को घर में रख दिया, घर में, और अपने निकल गए। यदि पति स्त्री को छोड़ करके और घर से निकाल जाए, सीता जी को तो दो पुत्र भी हैं, इनको कोई है? वहां पर तो ऋषि है, वाल्मीकि ऋषि और सब बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर हैं जो उनकी सांत्वना दे सकते हैं, शास्त्र ज्ञान इत्यादि संपूर्ण रूप से। और यहाँ पर सची मैया है, वो भी अपने पुत्र के विरह में डूबी हुई है, जो खुद ही विरह के में डूबी हुई है, वो दूसरों को एक दूसरे विरही को और क्या संतना, यदि वो संतना देगी तो उनकी संतना से और भी विरह का ज्वर बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, वो क्या कहेंगे? हाय हाय हमारा बेटा चला गया, बेटी ये तो कहेंगे, तुम्हारा पति गया और हमारा तो बेटा गया, जिसको हमने पैदा किया था वो हमें छोड़ करके चला गया, तुमको क्या संतना, और उससे विरह बढ़ जाएगा। इसलिए सची माँ संतना देने में जैसे कि वाल्मीकि थे, नारद उनके आश्रम में आते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग आते हैं उनको संतना देने, यहाँ पर इनके घर में कोई भी संतना, और यदि कोई शिवास इत्यादि पंडित अद्वैताचार्य हैं, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, तो उनके सामने में भूख नहीं खोती, घर से बाहर नहीं जाती, असूय परपश्या असूय परपश्या ये नारी है, सूर्य भी उनके चरणों का दर्शन नहीं करता, कोई भी नहीं करता, बस एक व्यक्ति थे, कौन?
ईशान,
ईशान था,
उन्हें उनका भूगत से उनका मुख नहीं देते थे, जीव गोस्वामी या कौन थे, उनके सिर पर चरण रखा था, बस किसी से मिलती जुलती नहीं थी, दिन रात उनके विरह में तड़पती हुई, बस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। उनका गुरु कौन था? उनके खुद पति थे। कैसे? सब समय घर में रहते समय सब समय हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए, कभी पछाड़ खाते, कभी रोते, कभी विलाप करते, कभी हा हा करते, उस अवस्था में जब श्रवण किया तो यही तो दीक्षा संपूर्ण रूप से हुई, पूर्ण शक्ति के साथ में वो दीक्षित हुई, और वैसे वो नित्य सिद्ध ही हुई। और यदि कहा जाए तो यदि एक व्यक्ति रामानंद जी से दीक्षा लेना चाहता है और रामानंद जी उसको इनकार करते हैं, और वो रात में आधी रात में उनके रास्ते में जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं रामानंद जी, तो रात में वो रास्ते के ऊपर में
सिद्धि के ऊपर
सो जाता है, और जब राय रामा वो रामानंद जी ये राय रामानंद नहीं
रामानंद रामानंद
वो जब गंगा जी में जा रहे हैं काशी स्नान करने के लिए, तो रात में अंधकार, रात में वो रास्ते में लेट गए, जब भोर में जब 4 बजे आ रहे हैं तम अंधकार, और उस समय उनके अंगों में लग गया ना, उनके लग गए उनके पैरों से, कहिए राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो, तो वो उठ करके खड़े हो गए राम राम राम, तुम कौन है? तो आपका शिष्य। कौन मेरा शिष्य? तो अभी जिसने जिसको आपने दीक्षा की, तो यदि ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ गए और कृष्ण नाम सुनाए सबको, दक्षिण में उत्तर में जहाँ जहाँ गए सब लोगों को क्या कहा? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, यही नाम ये महामंत्र का कीर्तन करो, और दूसरे से जाकर के ये कहना क्या कहना, ये दूसरों से इसी मंत्र को कहना और उसे कहना जो वो जाकर के दूसरों से कहे, इस तरह से एक से दूसरे से कहते हुए सारे विश्व को वैष्णव बनाए, चैतन्य महाप्रभु इस तरह से ये उनका कीर्तन सुन करके मंत्र का भाव समझती हैं। यदि हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं हरे कृष्ण माने हरे राधिके, कृष्ण कृष्ण हरे राधिके, राम राधा रमण राम, यदि समय तो वो नहीं समझती होंगी, हम लोगों से कम थी, इसलिए राधिका जी के तो प्रकाश भी तो हैं, जी के प्रकाश में इसलिए खूब अच्छी तरह से इनका भाव समझती थी, इसलिए वो विरह में कातर होकर के रोती हुई इस मंत्र का उच्चारण करती, कोई भी उनको नहीं देखता, बस एक जगह चावल रख देती कुछ और उसमें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और उसको धो करके दूसरी जगह रखती, पानी या कंकाल जल से नहीं धोती, अपने आंसुओं से उस चावल को धो, धोने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप क्या होता है तब तक आंसू निकल रहे हैं अपने धो लिया, इस तरह से यदि ऐसा कहती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, इसमें कितना समय लगेगा अब कैसे भाव के साथ में, कितनी देर में इतना सा चावल एक मुट्ठी चावल भी उसमें लग जाता हो, ऐसे हम लोग भी क्वांटिटी की तरफ में न जाएं, आज हमने सुना है कि कोई 4 लाख नाम करता है यहाँ मठ में, 4 लाख करने की जरूरत नहीं, 1 लाख ही हो, आधा लाख ही हो, एक नाम हो, किंतु इस क्वालिटी का क्वालिटी जितनी ऊंची होगी उतनी अच्छी है, विरह से भरा हुआ हृदय के कोर से निकला हुआ ये नाम होना चाहिए जो कृष्ण को भी भिजा सके उस आंसुओं से, उनका चित्त को द्रवित कर सके, ऐसे नाम करने की जरूरत है। यदि ऐसा करना है तो शिक्षा स्तर महाप्रभु का है, उनका अनुसार तो वो इस तरह से नाम करती। और जो दोपहर तक हो जाता है उसी को रसोई बनाती। अब सात मनाती कि नहीं मुझे पता थी, कैसे लेती थी। तो ठाकुर जी को भोग देना है तो साग भोग का कुछ जरूर बनता होगा, साग कुछ भी बन का साग हो या जो जरूर बनता होगा, तो उसी को रसोई बनाती। और सची मैया उसको भोग देती और उसको खाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब वो रोने लगती भोग दे करके, जैसे आज हमारा बेटा होता तो खाता, विशेष करके बसंत पंचमी के दिन तो कैसा भोग लगाती होती। और उस समय में सुनता शाक बनाती जो महाप्रभु जी को पसंद होती, माई पर माई को, और उसी को भोग देते। उसमें चैतन्य महाप्रभु एकदम वहाँ से उपस्थित हो जाते। उन्होंने किसी एक के द्वारा
दामोदर पंडित
के द्वारा मैया को संवाद दिया, फिर मैया को कहना, मैया जब भोग लगाती है तो मैं खुद जाता हूँ। वो समझती है कि नहीं, ये मुझे ऐसा शौक न हो रहा है,